नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को कम करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि वे अपने सैन्य अभियानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। इस सप्ताह ईरान के महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र पर इसराइल के हमले के बाद ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी संयंत्र को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इस महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र पर हमले से गैस और तेल की कीमतें बढ़ गईं और डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य कार्रवाई कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि इसराइल ईरान के गैस क्षेत्र पर आगे कोई हमला नहीं करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने श्री ट्रंप के अनुरोध पर ईरान के अधिकांश बिजली की जरूरतें पूरी करने वाले गैस क्षेत्र पर हमले बंद करने की घोषणा की है। इसराइल ने हिजबुल्ला से निपटने के सैन्य अभियान तेज करते हुए बेरूत पर फिर हवाई हमले किए हैं। इसराइल की सेना हिजबुल्ला से जुड़े कमान केंद्रों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। संघर्ष के तेज होने के साथ ही लेबनान में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के अमरीकी प्रयासों से पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के विरोध को दोहराते हुए कहा है कि अमरीका अपने रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरा तफरी में खरीदारी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि ईंधन की कमी की कोई सूचना नहीं है, इसलिए नागरिक घबराहट में खरीदारी न करें। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के अंतर्गत कंपनियों को लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। ये अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने जलुकाबारी से विदिशा नियोग, विश्वनाथ से जयंता बोरा और हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र से राहुल रॉय को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने राज्य में अपने सहयोगी रायजोर दल के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता सत्यापन पेपर, ऑडिट ट्रेल, ईवीएम, वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया है। आयोग ने कहा है कि इन राज्यों के साथ साथ गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में उपचुनावों के लिए भी ईवीएम वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया में चुनावों में प्रयोग होने वाली मशीनों का चयन संबंधित पक्षों की उपस्थिति में यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से वनों की रक्षा करने और वन्य जीवन को संरक्षित रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन केवल दोहन करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवन है जिसकी रक्षा और संरक्षण करना आवश्यक है। ऑलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज फ्रांस में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की ईशा रानी बरुआ का सामना थाईलैंड के पेचामोन ओप्टिरिथपुत से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।